आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं के स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों को जमीनी स्तर पर साकार करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
प्रधानमंत्री जी ने और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्र की नींव मजबूत कर रही है, इसके सुखद परिणाम सभी के सामने हैं। इस अवसर पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवनों की डिजाइन का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम का मऊ और बस्ती सहित प्रदेश के कई जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां के फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की पिछली 9 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। श्री पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा पहुँचाना है। वाराणसी में कल MP-UP सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य निवेश, निर्यात, ODOP, GI टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और पर्यटन के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में सभी माध्यमिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली के दौरान समाचार पत्र पढ़ने का सत्र अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला छात्रों में समसामयिक मुद्दों, सामान्य ज्ञान और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। यह स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनेगी और स्वगणना की जाएगी।
जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहत कार्य है, इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में सम्पन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं।
भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करते आ रहे हैं इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है, इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज, कल और पहली अप्रैल को कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अंचल में आज और कल कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में कल कहीं कहीं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।